नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी को अपनाने और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने की अपील की है। मतदाता सूची तैयार करने में शामिल बूथ स्तरीय अधिकारियों और बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ा। नीट पीजी परीक्षा आज एक ही पारी में सुबह 9 बजे से। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में आज अत्यधिक बारिश का अनुमान। और भारत के मुरली श्रीशंकर ने कजाकिस्तान में कोसानो मेमोरियल में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है, इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। कल उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था कई अनिश्चितताओं और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है और सभी देश अपने हितों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में नागरिकों का भी ये दायित्व है कि वो स्वदेशी का संकल्प लें।
जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा।
प्रधानमंत्री ने व्यापारियों और दुकानदारों से भी केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का संकल्प लेने की अपील की। श्री मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों पर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि ये नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें और हथियार देश के दुश्मनों का सफाया कर देंगे।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी।
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। एक रिपोर्ट।
बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया गया है। बीएलओ की प्रोत्साहन राशि भी 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है। उधर बीएलओ पर्यवेक्षकों को अब सालाना 12000 रुपए की जगह 18000 रुपए मिलेंगे। अब पहली बार निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को भी मानदेय मिलेगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को 30000 तथा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को 25000 रुपए दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने बिहार में गहन पुनरीक्षण कार्य से जुड़े बीएलओ के लिए 6000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुजरात के भावनगर और अयोध्या छावनी के बीच साप्ताहिक रेलगाड़ी को आज झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे मध्य प्रदेश के रीवा से पुणे के बीच तथा जबलपुर और रायपुर के बीच चलने वाली गाड़ियों को भी वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन नई रेलगाड़ियों से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को लाभ होगा।
भावनगर अयोध्या कैंट साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 11 अगस्त से प्रत्येक सोमवार को दोपहर 1:50 पर भावनगर टर्मिनस से रवाना होगी और ये ट्रेन अगले दिन शाम को 6:30 अयोध्या कैंट स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन भावनगर, सुरेंद्रनगर, महसाणा, आबूरोड, मारवाड़, अजमेर, जयपुर, कानपुर और लखनऊ समेत अनेक अन्य स्टेशनों पर भी रुकेगी। नई ट्रेनों के उद्घाटन के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव नौगांव स्थित एपीपीएल कंटेनर यार्ड का दौरा करेंगे और बाद में भावनगर में विकसित भारत भारत संवाद पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, भावनगर।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। कल आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में एक समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि बेहतर सड़क सुविधा के कारण आवाजाही की लागत 16% से घटकर 10% हो गई है और इससे निर्यात दोगुना होने तथा रोजगार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि विजयवाड़ा हैदराबाद सड़क को 6 लेन का बनाया जाएगा और हैदराबाद तथा विजयवाड़ा के बीच एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उन्होंने हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की।
हैदराबाद विजयवाड़ा 6 लेनिंग इसका काम हमने शुरू किया है। इसमें हम लोग अंबर उपेटा रथावरम और काचावरम से वेस्ट इब्राहिम पट्टनम यहाँ बाईपास भी बना रहे हैं। इससे हैदराबाद से विजयवाड़ा 5 घंटे का समय 2.5 घंटे में आएगा। हैदराबाद से विजयवाड़ा नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बनाएंगे। उस ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का DPR बनाने की भी सूचना मैंने डिपार्टमेंट को किए।
श्री गडकरी ने आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में कल 27 सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 5,233 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मेडिकल में प्रवेश के लिए आज देश भर में कई केंद्रों पर नीट PG परीक्षा होगी। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी सवेरे 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही पाली में परीक्षा देंगे। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षार्थी को अपने साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज ले जाना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आयुष मंत्रालय से परामर्श के बाद आयुर्वेदिक आहार की एक सूची जारी की है। इसमें खानपान को लेकर भारत के सदियों पुराने ज्ञान को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियां दोनों में विश्वास बढ़ेगा। एक रिपोर्ट।
इस फैसले से आयुर्वेदिक आहार उत्पाद तैयार करने के लिए कारोबारियों को भरोसेमंद सामग्री भी मिल सकेगी। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोगों से दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद आहार को सम्मिलित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद आहार शरीर को पोषण देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन और समग्र स्वास्थ्य लाभ को भी बढ़ावा देते हैं। इस पहल से खाद्य उद्योग जगत के लिए नियामक स्पष्टता बढ़ेगी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद आधारित पोषण को व्यापक स्वीकृति मिल सकेगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
विश्व प्रसिद्ध बिहार संग्रहालय प्रदर्शनी राजधानी पटना में इस महीने की 7 तारीख से आयोजित होगी। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस बार के आयोजन में ग्लोबल साउथ के देशों के साझा इतिहास को केंद्र में रखा गया है।
इसमें आपका 8 महादेशों से आ रहे हैं लोग, फिर भारत के जो कला संस्थाएं हैं जैसे NGMA है, IGNCA है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से मेहरानगढ़ है जो राजस्थान के एक अच्छा संग्रहालय है, तो इन सब जगहों से एग्जीबिशन आएगा और यहाँ से विद्वान आएंगे और यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा देश दुनिया के कलाकृतियों को देखने का।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कल प्रथम तेलंगाना खेल सम्मेलन में राज्य की खेल नीति घोषित की। इसके अंतर्गत राज्य में खेल ढांचे का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार तेलंगाना खेल विकास कोष के प्रबंधन के लिए 14 सदस्यों वाले शासी बोर्ड का गठन करेगी। इसमें कपिल देव, अभिनव बिंद्रा, पुलेला गोपीचंद, बाईचुंग भूटिया और संजीव गोयनका जैसे नामी खिलाड़ी होंगे। दिल्ली पुलिस ने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए 16 अगस्त तक के लिए दिल्ली में पारंपरिक उपकरणों की उड़ान पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक असामाजिक तत्व और आतंकी पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, गर्म हवा के गुब्बारे जैसे उपकरण का दुरुपयोग कर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अमेरिका से निर्वासित 39 बांग्लादेशी नागरिक कल ढाका पहुंचे, इनमें एक महिला भी शामिल है। बांग्लादेश के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकांश लोगों ने मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश किया था। अमेरिका पहुंचने पर इन लोगों ने शरण के लिए आवेदन दिया था। अमेरिकी अधिकारियों और अदालतों ने इन आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसके बाद इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया है। अपने हवाई क्षेत्र पर ईरान ने ये प्रतिबंध इस वर्ष जून में इसराइल के साथ 12 दिन के संघर्ष के दौरान लगाए थे। ईरान के नागर विमानन संगठन के अनुसार तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही फिर सामान्य हो गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, रायलसीमा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात से हल्की बूंदाबांदी जारी है। विभाग ने आज भी दिल्ली में बादल छाये रहने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
भारत के मुरली श्रीशंकर ने कजाकिस्तान में कोसानोव स्मारक विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लंबी कूद स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। श्रीशंकर ने 7.94 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया। एथेंस में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान लैकी ने पुरुषों की 110 किलो फ्रीस्टाइल का रजत पदक जीत लिया है। एक अन्य भारतीय पहलवान सितेंद्र ने पुरुषों की 60 किलो फ्रीस्टाइल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सितेंद्र ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के बेकासिल असमबेग को पराजित किया। भारत के गौरव पुनिया 65 किलो फ्रीस्टाइल स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में ईरान के मुर्तजा मुल्ला मोहम्मदी से हार गए। उधर लंदन में एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला के पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में एक विकेट पर 50 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले भारत ने कल अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दिया। पहली पारी में भारत ने 224 और इंग्लैंड ने 247 रन बनाए थे। इंग्लैंड श्रृंखला में 2-1 से आगे है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल वाराणसी में एक जनसभा में स्वदेशी सामान खरीदने पर जोर देने की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, श्री मोदी ने कहा, हम वही चीजें खरीदेंगे जिनमें किसी भारतीय का पसीना बहा हो। पत्र में इसे शीर्षक दिया है, प्रधानमंत्री ने दिया मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का मंत्र। लोक सत्य की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, सेना के हथियार उत्तर प्रदेश में बनेंगे। पत्र आगे लिखता है, प्रधानमंत्री ने काशी से दी किसानों को सौगात। राष्ट्रीय सहारा ने उनके इस बयान को दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाई देश की ताकत। कर्नाटक की विशेष अदालत द्वारा पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने की खबरें राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकतर अखबारों में हैं। विज्ञापन में गड़बड़ियों पर गूगल के खिलाफ जांच की खबर को अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि विज्ञापन बाजार में गूगल अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान की खबर है, नई दवाओं के ट्रायल में तेजी लाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पत्र के अनुसार अमेरिका के वैज्ञानिकों का अध्ययन, इलाज खोजने में होगी मदद। आज मित्रता दिवस पर अखबारों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान का कहना है कि आजकल आभासी दुनिया से आगे बढ़कर अब चैटबॉट और एआई किशोरों के पसंदीदा दोस्त बन रहे हैं। उधर दैनिक भास्कर ने अपनी खास खबर में लिखा है कि सच्ची दोस्ती की पहचान तब होती है जब दोस्त का दर्द अपना दर्द महसूस होने लगे।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी को अपनाने और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने की अपील की है। मतदाता सूची तैयार करने में शामिल बूथ स्तरीय अधिकारियों और बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ा। नीट पीजी परीक्षा आज एक ही पाली में सुबह 9 बजे से। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज अत्यधिक बारिश का अनुमान। और मुरली श्रीशंकर ने कजाकिस्तान में कोसोनो मेमोरियल में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा का स्वर्ण जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।